नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ। विधानसभा में आज चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में हुई तीखी बहस। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न। सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। विपक्ष का आरोप, अफरा तफरी वाला रहा सत्र का माहौल। और दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जताई जरूरत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने और नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाने की तैयारी कर रही है। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की बैठक में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं से भी इनपुट लिया जाएगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पांच प्रमुख नदियां हैं, जिनकी ड्रेजिंग और डी लिस्टिंग व्यवस्थित तरीके से की जाए तो राज्य सरकार को 2 से 3 हजार करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नदी में जमा सामग्री हटाने के लिए ड्रेजिंग कराने का सुझाव दिया था। इसके बाद उद्योग विभाग ने ड्रेजिंग की अनुमति दी, लेकिन माइनिंग की अनुमति न मिलने और अगली बरसात में काफी सामग्री बह गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की एक बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रेजिंग के दौरान रॉयल्टी न लेने का सुझाव दिया, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि रॉयल्टी उसका अधिकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग का काम वन निगम के जरिए किया जा रहा है और इससे राज्य को 100 से 200 करोड़ रुपए तक की आय हो रही है। इससे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और ड्रेजिंग के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी मिलने की है। चौहान ने बताया कि पूरे हिमाचल में करीब 324 साइट्स हैं, जिनमें अभी तक केवल 5-6 जगहों पर वन मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल ने भी इसी मामले पर अनुपूरक सवाल पूछे और ड्रेजिंग से निकलने वाली सामग्री के मामले में घोटाले की आशंका जताई। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल में माइनिंग से रॉयल्टी की आय वर्ष 2024-25 में 356 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछली सरकार के समय ये करीब 240 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि नई माइनिंग नीति के बाद राजस्व में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक दीपराज के पेंशनरों से जुड़े मूल सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है और लंबित वेतन, पेंशन तथा दूसरे वित्तीय लाभों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों को करीब 2,229 करोड़ रुपए के लंबित वेतन और पेंशन संबंधी एरियर का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान कर दिया गया है और 58 से 67 वर्ष की आयु के उन कर्मचारियों के लंबित लाभों का भी भुगतान किया गया है जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश पर करीब 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लगातार काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट ने सरकार के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी। इसमें वर्ष 2024-25 में राज्य का राजस्व घाटा 6,804 करोड़ 61 लाख रुपए और राजकोषीय घाटा 12,611 करोड़ 5 लाख रुपए रहा। दोनों ही निर्धारित सीमा से अधिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 86% हिस्सा वेतन, पेंशन और ग्रेचुटी पर खर्च हो गया। केवल वेतन और पेंशन पर ही करीब 70% राजस्व खर्च हुआ। कैग रिपोर्ट के अनुसार राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.94% रहा, जबकि राजकोषीय घाटा 5.44% दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बढ़ते कर्ज और सीमित पूंजीगत निवेश पर भी सवाल उठाए हैं और हिमाचल के तेजी से बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सहैंडल एट द रेट AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज सदन में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2026, युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक 2026 और हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक 2026 शामिल है। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जबकि युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक और सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक बिना चर्चा के पारित किए गए। पारित विधेयकों को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मॉनसून सत्र आज राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित ये सत्र कुल 45 घंटे 30 मिनट तक चला और सदन की प्रोडक्टिविटी 91% रही। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि अब विधानसभा की तरफ से विधायकों की गाड़ी में आधिकारिक झंडी लगेगी।
महत्वपूर्ण होते हैं, निश्चित तौर पर उन पर चर्चा होनी चाहिए। 545 रिव लगे थे, सबके उत्तर जो है सभी सामान्य सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। कुछ चर्चा में नहीं आए हैं, जो डिस्कशन है उसमें मान्य सदस्यों ने किया है और आगे जो सत्र होगा उसमें कर देंगे। सभी सामान्य विधायकों को एक डिसिंग फ्लैग मिलेगा जो उनकी गाड़ी के ऊपर जो है लगेगा, जैसे हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जो डिसिंग फ्लैग है उससे, ताकि उनको कोई जब कभी वो प्रदेश से बाहर जाए या प्रदेश में आइडेंटिटी की कोई समस्या न।
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई अहम बिल पारित हुए।
इस बार हमारा मॉनसून सेशन जो है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है वो चला है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिन या दो दिन बहिष्कार किया गया, उसके बावजूद जो है सुचारू रूप से चला है और बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज पे सदन में चर्चा हुई है और जो विपक्ष के जो अच्छे सुझाव थे वो सरकार और मुख्यमंत्री जी ने माना है। सुचारू रूप से हिमाचल प्रदेश का ये मॉनसून सेशन बहुत अच्छा चला है।
दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जल्दबाजी में थी और सदन का माहौल अफरा तफरी वाला रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष ने मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को सदन में उठाया है। उन्होंने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
जो एक्ट यहाँ विधानसभा के अंदर लाए जा रहे हैं उसमें सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। एक नहीं अनेक ऐसे फैसले जो विधानसभा के अंदर बिल के रूप में पारित हुए लेकिन उसके बाद वो बिल हाईकोर्ट ने सदन के अंदर सार्थक चर्चा करने का प्रयत्न किया, जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयत्न किया और जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश विपक्ष की ओर से ईमानदारी से हुई लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाया, इस बात का हमको खेद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन में देश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और जल क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, पेयजल योजनाओं को सुदृढ़ करना और जल संसाधनों का वैज्ञानिक व सतत प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़कर व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल से जुड़े प्रमुख परिवहन मुद्दे भी उठाए। उन्होंने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य वैधता अवधि को 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। 16वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए पंचायतों को मिलने वाली धनराशि जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के प्रदेश सरकार के आदेशों का सिरमौर जिला के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। पांवटा साहिब विकास खंड की 22 पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने आज प्रधान संघ के बैनर तले नाहन में उपायुक्त के साथ बैठक कर चर्चा की। प्रधान संघ पांवटा साहिब के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि पंचायतों में पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि का पैसा जल शक्ति विभाग को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का पंचायतों के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। प्रधान संघ ने मॉनसून की बारिश के दौरान पंचायतों में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिला उपायुक्त से बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में माइनिंग के लिए अलग विभाग बनाने व नदियों से जमा सामग्री हटाने के लिए नई ड्रेजिंग नीति लाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा ओपीएस का लाभ। विधानसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। भारतीय स्टाम्प विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी बहस। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न। सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। विपक्ष का आरोप, अफरा तफरी वाला रहा सत्र का माहौल। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जताई जरूरत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।